તારીખ 27/7/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 609 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 143
પત્ર 609 ચલતા હૈ 609 પત્ર કા 10વા પેરેગ્રાફ પર સ્વાધ્યાય ચલતા હૈ आगे ऐसा कहा कि दुर्लभ ऐसा यथार्थ सत्संग आत्मकल्याण के हेतुभूत ऐसा सत्संग प्राप्त होने पर भी जीव का कल्याण नहीं हुआ और अभी तक परिभ्रमण कर रहा है, इसके भी कारण है, इसलिए सफल नहीं हुआ, निष्फल होने का भी कारण है। कौन से कारण हैं कि मिथ्या आग्रह, स्वच्छंदपना, प्रमाद और इंद्रिय विषयों की आसक्ति, उपेक्षा न की मतलब आसक्ति किया, ये जो परिणाम है इस सत्संग को सफल होने नहीं देते। मिथ्या आग्रह मैंने कि आगे हमने जो जो बातों का स्वीकार किया है उसका हमें आग्रह हो गया है, सत्य बात मिलने पर भी वो नहीं छूटना, उसको कहते हैं कि मिथ्या आग्रह। अनेक प्रकार के मिथ्या आग्रह होते हैं। सत्संग में आने वाले को चाहिए तो एकदम मध्यस्थ होकर के, क्लीन स्लेट होकर के, यानी आत्मकल्याण की बातें सुनने के लिए एकदम जिज्ञासु होने होकर के सुने, तो ये बोध है वो ग्रहण करने की परिस्थिति बनती है। वरना पुरानी बातें जहां तक रहती है, नई बात स्थान पाती नहीं है, वहां उसका खाली जगह ही नहीं, ये छोड़ना है। स्वच्छंदपना, ज्ञानी की आज्ञा को नहीं स्वीकार करके, नहीं दरकार करके अपनी मनमानी करना, वो स्वच्छंदता है। चाहे भी धर्म साधन करे जीव, लेकिन ज्ञानी की आज्ञा को जो अज्ञानकृत रूप से सत्संग नहीं करता है, उसको वो ज्ञानी का बोध परिणाम नहीं पाता। थोड़ी बात चल गई थी, संक्षेप में लेते हैं। प्रमाद मैंने शिथिलता, बाद में करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, अभी कुछ काम ऐसे निपटाने हैं वरना तो मैं कर लेता, इतना हो जाएगा बात करूंगा, तो ये सब प्रकार के जो परिणाम है वो शिथिलता के परिणाम है। वो शिथिलता का दूसरा नाम होता है प्रमाद। और पंचेंद्रिय के विषय में जो आसक्त है वो पुद्गल परिणाम में आसक्त होने से उसको आत्मरस चढ़ने की जगह नहीं होती। वो रस चढ़ा है, उचड़ा हुआ है, तो पहले तो उसको विरक्तता में, वैराग्य में आना जरूरी है। इसलिए पहला कदम ही वैराग्य वाला है, जो वेदना वाला है उसमें वैराग्य अभेद है। जिसको वेदना आएगी यथार्थ, उसको वैराग्य होगा यथार्थ। जिसको बिना वेदना वैराग्य होता है वो यथार्थ नहीं होता है। तो ऐसे इंद्रिय विषयों से अनासक्तपना हो, उपेक्षा करते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो सत्संग फलवान नहीं होता। अब चार बातें कहीं, चार बातों, चारों प्रकार के परिणाम में भी अनेक विधता है, हरेक की योग्यता अनुसार अनेक विधता इसमें भी है। जैसे पांच इंद्रिय के विषय में किसको खाने का ज्यादा रस है, तो किसी को खाने के कोई दरकार नहीं है, लेकिन उसको संगीत अच्छा चाहिए, खाना नहीं मिले तो चलेगा, सुनता रहेंगे। तो कर्ण प्रियता होती है, तो किसी को स्वाद प्रियता होती है, तो किसी को रूप प्रियता होती है, किसी को सभी होता है, दो होता है, चार होता है, पांचों भी होता है, एक भी होता है, सब एक ही बात है। विविधता हो सकती है। अब ये सब प्रकार का सॉल्यूशन कहाँ निकाले, कैसे निकाले, इसका क्या करे, उसका क्या करे, हमको ये होता है, हमको वो होता है, कोई बोलेगा हमको ये होता है, इसका क्या करे। ज्ञानी पुरुषों ने अपने अनुभव से एक बात बता दिया है कि इसका भी एक मास्टर की है, सब ताला खुल जाएगा। क्या कहते हैं, सत्संग में एक निष्ठा और अपूर्व भक्ति ये आनी चाहिए। एक निष्ठा मैंने एक आत्म कल्याण के लक्ष्य से ही सत्संग करना, इधर उधर नहीं देखना, बगल में कौन बैठा है अपने को देखने की कोई जरूरत नहीं, वो सुनता है कि नहीं सुनता है अपने को देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक निष्ठा से सत्संग करो, एक लक्ष्य से, मेरा आत्म कल्याण कैसे हो। और अपूर्व भक्ति, जिसका सत्संग करते हैं इसके प्रति अपूर्व भक्ति होनी चाहिए। कभी ऐसी भक्ति नहीं की हो, ऐसी भक्ति हुए तो दर्शन वो स्वतः मंद होता है और सत्संग उसको मिलता है तो सत्संग फलवान होता है। अगर ये दो बातें में से एक भी बात नहीं है, सत्संग निष्फल जाएगा, ये बात अवश्य है। ये कहते हैं कि सत्संग में एक निष्ठा और अपूर्व भक्ति आई न हो तो फलवान होता नहीं। उसमें भी, दोनों में भी, जो एक एवी अपूर्व भक्ति से सत्संग की उपासना की हो तो अल्पकाल में मिथ्या आग्रह, स्वच्छंद प्रमाद, इंद्रियों का रस सब नाश को प्राप्त होता है और अनुक्रम से जीव सर्वदोष से मुक्त होता है। अनुक्रम से मैंने आगे जा करके वो मुक्त हो जाएगा। तो एक बात बता दी, दो में से भी एक कर दिया कि अगर अपूर्व भक्ति से सत्संग की उपासना करने में आए तो भी इसका निवेदन हो ही जाएगा। पहचान के पहले अपूर्व भक्ति नहीं आती, परंतु निष्काम भक्ति तो आ सकती है। निष्काम भक्ति का अर्थ यह है कि हमें कोई कामना कोई आशा नहीं है, भक्ति के पीछे हमारा हमारी कोई कामना नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, इस प्रकार की एक भक्ति होती है, उसको निष्काम भक्ति कहते हैं।
ऐसे परिणाम से ऐसा भक्ति आ सकती
है, उसमें क्या है, सकामता को छोड़ दो, किस किस प्रकार की सकामता रहती है तो सकामता को छोड़ो। एक आत्महित के अलावा कोई कामना नहीं है इसमें, एक ही बात है।
ये नहीं होने से आत्म एकमात्र आत्महित ही करना है, इसी भी निष्कामता का अदरवाइज नहीं हो सकता
ना, इसके सिवा नहीं होगा, उसके सिवा दूसरे कामना आ जाएगी। अगर ये बात नहीं होगी तो और कामना आए बिना रहेगी नहीं। तो उस विषय में अपने परिणामों को और खास करके अपने अभिप्राय को बारीकाई से सूक्ष्मता से चेक करके एकदम शुद्ध हो जाना चाहिए। इसके बिना जो भी भक्ति आदि के परिणाम है, सत्संग के परिणाम है, वो भी निष्फल होने वाले हैं।
तो हम सत्संग में रहेंगे, सत्संग में रहेंगे, समय निकालेंगे अपन, वो अवश्य अवश्य निष्फल जाएगा।
हाँ, निष्फल जाएगा, कुछ भी करो अनंत काल तक सत्संग करते रहो, इससे क्या होगा। जब दृष्टि मलिन है, जब कामना होती है तो क्या होता है, दृष्टि मलिन होती है। 212 में वो बात किया है, तो सत्संग सफल होने वाला नहीं है। तो अनुक्रम से सब दोष का नाश होकर के पूर्ण शुद्धि हो जाती है। आगे कहते हैं कि सत्संग की पहचान होना जीव को दुर्लभ है। अब भाई पहचान की बात है, क्यों कि बिना पहचान इसका मूल्यांकन होने वाला नहीं है। बिना पहचान जो है इसका मूल्यांकन होने वाला नहीं है। सत्संग की पहचान होना जीव को दुर्लभ है। यथार्थ सत्संग यह है, ऐसी पहचान होना दुर्लभ है। वो भी सुलभ कब है कि जिसको एक निष्ठा है आत्मकल्याण के, उसको पहचान आ जाएगी। क्योंकि आत्मकल्याण की जो भावना है वो भावना मात्र कोमल होती है, और जिसको ये भावना की पुष्टि नहीं होती है उनको पता चल जाता है मैं जहां भी सत्संग करने जाता हूं ये सत्संग यथार्थ नहीं है। जिसको ये भावना नहीं है उसको ये विचार भी नहीं आएगा। जिसको आत्मकल्याण की भावना नहीं होगी, एकमात्र आत्मकल्याण की, ऊपर ऊपर से तो सबको होती है, वरना क्यों जाएगा, वरना को पैसा कमाने के बहुत पूरा टाइम क्यों नहीं लगाएगा। लेकिन सत्संग में जाता है तो भी वो नहीं देखता है कि मुझे आत्मकल्याण हुआ कि नहीं हुआ। इतना समय से मैं जाता हूं, मेरा इतना टाइम गया, क्या मिला मुझे, वो बात को जो तलाश नहीं करता है उसको भावना नहीं है ऐसा बोला जाता है। और जिसको भावना है उसको तलाश हो जाती है, तो मुझे तो कुछ मिलता नहीं है, सुनते रहते हैं बहुत सी बातें आती हैं लेकिन हमको तो कुछ मिलता नहीं है, हमारी भावना को तो कोई पुष्टि नहीं मिलती, भावना सफल नहीं हो रही है। उसको पता चल जाएगा कि ये यथार्थ सत्संग नहीं है, वो तो उनको छोड़ देगा। क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसमें या तो हमारा मिथ्या आग्रह है, या तो हमारा स्वच्छंद है, या तो हमारा प्रमाद है, या तो हमारी आसक्ति इंद्रिय विषयों में बढ़ी हुई है, या तो हमको अपूर्व भक्ति आई नहीं, या हमारी निष्ठा भी एक लक्ष्य से, एक आत्मकल्याण की निष्ठा से हम सत्संग नहीं कर रहे हैं। ये जो फैक्टर्स हैं उसमें किसी को भी पहचान सकते हैं, तलाश करके चेक कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, तो सत्संग सफल नहीं होगा। अब वह मुद्दा अलग आया है कि अब तो पहचान होनी चाहिए, तो पहचान कैसे होती है ये एक समस्या होती है। बहुत से मुमुक्षु तो ऐसे पूर्वग्रह में आ जाते हैं, पहले से ही प्रेजुडाइस में हो जाते हैं कि हमारी तो कोई कैपेसिटी नहीं, ये यथार्थ सत्संग है, ये सत्पुरुष है, ये तो हम पहचान कर नहीं सकते, हमारी इतनी योग्यता नहीं, तो फिर हमारा तो हमको तो जहां भी हमको तत्व सुनना मिले, अध्यात्म सुनना मिले, हमको जाना चाहिए। बात तो अच्छी करते हैं, कोई बुरी बात थोड़ी ना करते हाँ। तो इस प्रकार से ऊपर ऊपर से ओक संज्ञा से चलते हैं, ऐसा नहीं चले। ये बहुत हमारा आयु का समय भी बहुत कीमती है, और ये भाव भी बहुत कीमती है क्योंकि बार बार नहीं मिलता, और ये मौका भी यथार्थ सत्संग का बार बार नहीं मिलता। क्योंकि बहुत कम मात्रा में है, हर जगह वो चीज मिलती नहीं, वो कम मात्रा में है, इसलिए इसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि ये बहुत दुर्लभ है और पूरी गंभीरता से सावधान हो करके जागृत रह करके सत्संग की उपासना करनी चाहिए। दो सौ अस्सी 238 चित्त की सरलता, वैराग्य और सत प्राप्त होने की जिज्ञासा, ये प्राप्त होना परम दुर्लभ है और उसकी प्राप्ति में परम कारण रूप ऐसा सत्संग प्राप्त होना यह तो परम दुर्लभ है। एक तो जीव को सरलपना नहीं है, वैराग्य नहीं है और आत्म प्राप्ति की, सत प्राप्ति की, आत्म कल्याण की जिज्ञासा भावना नहीं है, ऐसा होना ये परम दुर्लभ है। और ऐसे होने के लिए, ऐसे गुण प्राप्ति के लिए सत्संग निमित्त है, ऐसा सत्संग भी प्राप्त होना ये तो परम दुर्लभ है, ये तो और भी दुर्लभ है। तो सत्संग मूल कारण है, सत्संग है तो दूसरे गुण आ सकते हैं। किसके विषय का?
क्रम का
विषय का।
हाँ, सरलता लिया,
चित्त की सरलता जो है वो पहले होनी चाहिए। सर सरलता होगी तो वैराग और सत प्राप्ति की जिज्ञासा।
सरलता को थोड़ा से लेफ्ट।
अच्छा, चित्त की सरलता में क्या है कि अपने कल्याण के विषय में जीव को टेढ़ापन आता है, परिणाम में वो इसकी असरलता है, पारमार्थिक असरलता तो वो है। व्यवहारिक सरलता भी चाहिए और पारमार्थिक सरलता भी चाहिए। सरलता पर तो एक पूरा आर्टिकल अपना आ गया है, ये मुमुक्षु की भूमिका का बहुत से बड़ा गुण है। ऐसा एक गुण है कि कहीं अवगुण को वो आने ही नहीं देता, कितने अवगुण को तो वो आने ही नहीं देता। अगर सरलता नहीं रही तो कितने अवगुण आ जाएंगे वो भी कहना मुश्किल है। तो वक्रता नहीं होना, हट के परिणाम नहीं होने, जिद के परिणाम नहीं होने, माया के परिणाम नहीं होना, मान लिया है तो आर्टिकल में सब बात लिया है। ये सब प्रकार के जो परिणाम है वो असरलता के परिणाम है, वो नहीं होना चाहिए। और सरलता से जैसे आत्महित हो वैसा ही होना, उसका ख्याल करके अपनी वर्तना उसका ख्याल करके होनी चाहिए कि जिससे अपना भी कल्याण हो और दूसरे के कल्याण में हम बाधक भी नहीं हो। अपने कल्याण के लिए तो हम पूरा स्वार्थी हो जाएंगे और दूसरे का कल्याण हो न हमें कोई दरकार नहीं है, ऐसा भी सरलता में तो नहीं होता है। सरलता में तो सरलता ही काम करती है, हम सरल है। यहाँ एक प्रश्न उठेगा कि क्या हम हमारा खो करके दूसरों को दे दें, वो सवाल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि हम एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं आपस में एक दूसरे को, देखो यहाँ अपन बैठे हैं, हॉल तो बड़ा है, हो सकता है कि हमारे पास छोटा कमरा भी हो, रात को बैठते हैं तो कमरा छोटा है, हम क्या करें, क्या करते हैं, आते जाते हैं जैसे मुमुक्षु आते जाते हैं, हम क्या करते हैं, एडजस्ट होते जाते हैं। फिर ऐसा लगा कि भाई ऐसी परिस्थिति है कि कईयों को अंदर आना ही मुश्किल हो जाता है, तो फिर बड़े कमरे का भी विचार करते हैं, चलो कोई ऐसा बड़ा कमरा पसंद करो जहां हम सत्संग करेंगे, लेकिन लाभ तो सबको मिलना चाहिए, ये बात तो होनी चाहिए। ऐसे व्यवहारिक सरलता है और पारमार्थिक सरलता अगर आएगी तो व्यवहारिक सरलता सहज आ जाएगी, पारमार्थिक सरलता आएगी तो व्यवहारिक सरलता तो सहज ही आ जाएगी।
इसमें भी क्रम है, इसमें भी क्रम हो गया,
तो उसमें वो समाविष्ट है, ये तो ऊपर के स्तर की है ना, तो उसमें वो समाविष्ट है। जब अपने पारमार्थिक सरलता आत्म कल्याण की आएगी तो व्यवहारिक सरलता ये बिना रहेगी, क्योंकि ये मार्ग ही स्वपर कल्याणक है। ये जो मोक्ष का मार्ग है, परमार्थ का जो मार्ग है, वो स्वपर कल्याणक होता है, खुद कल्याण करता है और दूसरे के कल्याण में वो स्वयं निमित्तभूत हो जाता है। हमको होना है वो सवाल नहीं है, हो जाता है, ऐसा बन जाता है। लेकिन असरलता होगी तो ये ना अपना कल्याण होगा ना अपने निमित्त से दूसरों का भी होगा। जो सरलता है ये तो एक बहुत बड़ी चीज है मुमुक्षु के लिए।
ये भी नहीं है जब सरलता ही नहीं है तो मेरे के कहाँ से,
फिर तो कोई आगे की बात आएगी नहीं, बहुत से दुर्गुण आ जाएंगे।
ऐसा गुण है जो वैराग्य की उत्पादक,
हाँ वैराग्य का उत्पाद है, उत्पादक है, सत की भावना का भी उत्पादक है, वो तो है, तीनों बात लिया है। अब कहते हैं कि सत्संग की पहचान होना दुर्लभ है, कोई महत्वपूर्ण योग से जिसको वो पहचान हुई, पहचान होने से निश्चय करके यही सत्संग है, यही सत्पुरुष है, ऐसा साक्षी भाव उत्पन्न हुआ हो, उस जीव को कैसा परिणाम आता है, वो कहते हैं। फिर से जतो करवानो प्रश्न नथी, लाभ લેવાનો પણ છે ને લેવા દેવાનો પણ છે, પણ એડજસ્ટ કરવાની વાત છે, જતો કરવાની વાત નથી।
ક્યારેક એવું પણ બને
ના, એમાં એવું છે, ક્યારેક વાત, ક્યારેકની વાત જુદી છે, કોઈ એવા કોઈ વિશેષ વિશિષ્ટ પ્રકારના સંયોગોની વાત જુદી છે, પણ પોલિસી મેટરનો એ સવાલ નથી, અભિપ્રાયનો એ વિષય નથી। અભિપ્રાય તો એમ હોવો જોઈએ કે સૌએ લાભ લેવો જોઈએ અને સૌને લાભ મળવો જોઈએ, એ અભિપ્રાયનો વિષય હોવો
જોઈએ।
બસ પછી તો આવી જ ગઈ, જે એડજસ્ટ કરવું છે એનું નામ જ સેક્રિફાઈસ છે। અગર નહીં કદર હોતી ભાવના મેં આને વાલા જીવ દૂસરે કી ભાવના કા કદર કરેગા હી કરેગા। अगर दूसरे की भावना की कदर नहीं होती है तो वो खुद भी सही भावना में
नहीं,
नहीं आया है, ये बात सिद्ध होती है मां, तो इसमें तो थोड़ी भी गड़बड़ नहीं चलती है। कोई महत्वपूर्ण योग से यह पहचान होने पर, यानी पहचान होना ये कोई महत्वपूर्ण का योग समझ लेना, पहचान होना ये बहुत, पहचान होता है वो जीव बहुत बड़भागी है ऐसा समझ लेना, महत्वपूर्ण का योग इसको कहते हैं कि वो बहुत बड़भागी है। क्योंकि उसका तो आत्म कल्याण हो ही जाएगा।
प्रथम संकेत होता है, उसमें प्रथम संकेत समाविष्ट है,
उसमें प्रथम संकेत समाविष्ट है। सत्पुरुष की पहचान में परमार्थ सम्यक्त्व का बीज पड़ा है, ये सम्यक्त्व का बीज है। मोक्ष का बीज सम्यक दर्शन है, मूल बोला है दर्शन मूलो धम्मो, लेकिन मूल भी बीज में से आता है, पहले मूल नहीं होता है, पहले बीज होता है, बाद में यहां से मूल फूटता है। तो मूल तो समझ गए कि मोक्ष का मूल धर्म का मूल तो सम्यक दर्शन है, लेकिन मूल का बीज क्या है? कि मूल का बीज सत्पुरुष की पहचान है।
500 नंबर पत्रांक में आया है
बीजभूत भूल दिया है कि 500
नंबर
पत्रांक 500 में पत्रांक 500 में बीजभूत भूल का बात किया है। हाँ बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा
लिखा, बीज भी भूल की बात बहुत अच्छी लिखी है। अभी वहाँ इन दिनों में वहाँ भावनगर में चला था, नंबर नहीं याद रहा हमको,
500 नंबर।
विचार की उत्पत्ति होने के बाद क्या शैली है कृपालु देव की? अगर किसी को विचार आता है कि आत्म कल्याण कैसे करें, कि हम पूजा करें, भक्ति करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, दया दान करें, क्या करें, उपवास कर ले, क्या करें, ऐसे विचार की उत्पत्ति होने के बाद वर्धमान स्वामी जैसे महात्मा पुरुष ने, देखो सामान्य ने लिया, तीर्थंकर पुरुष को लिया है, हरी फिर के मैंने बहुत सोच करके ऐसा विचार किया है कि इस जीव को अनादि काल से चारों गति में परिभ्रमण अनंत बार हुआ है, जन्म मरण अनंत बार वह होने पर भी अब भी फिलहाल भी वह जन्म मरण आदि की स्थिति नाश नहीं कर सका है, वही स्थिति में अभी गुजर रहा है और जन्म मरण होता रहेगा, इस स्थिति को छोड़ी नहीं, उस स्थिति का अभाव नहीं किया, तो फिर अब किस प्रकार से उस स्थिति को नाश करना, क्षीण करना, और ऐसी कौन सी भूल, देखो ये बात टू द पॉइंट करते हैं, और ऐसी कौन सी भूल यह जीव को रहा करती है कि जिस भूल के कारण से इतने हद तक परिणाम हुआ कि जन्म मरण जीव करता ही रहा, परिभ्रमण छूटा ही नहीं, ऐसी कौन सी भूल की, और ऐसी कौन सी भूल मिटे तो यह जन्म मरण मिट जाए, बस उतना संक्षेप में समझ ले, बात खत्म। इस प्रकार से बार बार अत्यंत एकाग्र रूप से, देखो कितना वजन देते हैं, इस प्रकार से बार बार अत्यंत एकाग्रपणे से सदबोध के वर्धमान परिणाम से विचारते सदबोध मैंने आत्मज्ञान के परिणाम वर्धमान होने लगे वर्धमान स्वामी को अपने ज्ञान दशा में, तो उसमें विचारते जो भूल भगवान ने देखी है, यह भूल जिनागम में थाम थाम कही है, यह भूल आगम में नहीं है कही है, सो बात नहीं है, उन्होंने कही है थाम थाम, परंतु सर्व भूल की बीज भूत भूल ये बात कही, वह जीवे प्रथम में प्रथम विचार करनी घटती है कि जिस भूल का विचार करने से सर्व भूल का विचार होता है, फिर सर्व भूल मालूम पड़ती है, इसके पहले भूल नहीं मालूम पड़ती, दूसरी दूसरी अब क्या हमारे में हो रहा है, दूसरी दूसरी भूल हमको मालूम पड़ती है, ये भूल मालूम नहीं पड़ती है, ये गड़बड़ है, हमको ये होता है, हमको वो होता है, हमारे ये परिणाम हो गया, हमारे वो परिणाम हो गया, हमारे यहाँ भूल होती है। छोड़ इस बात को, बीज भूत भूल निकालो पहले से। कि जिस भूल का विचार करने से सर्व भूल का विचार होता है, और जो भूल के मिटने से सर्व भूल मिट जाती है। कोई जीव को कदापि अनेक प्रकार की भूल का विचार करने से भूल विचार कर करके भूल को भूल से छुपना चाहता है तो ऐसा कर्तव्य है, ऐसा कर्तव्य नहीं है, सो बात नहीं है, परंतु बीज बुद्ध भूल पर वजन आना चाहिए, वरना मिटेगी फिर हो जाएगी, मिटेगी फिर हो जाएगी, मिटेगी फिर हो जाएगी, ये बात हो जा वो करेगी। कहते हैं ये बात यहाँ चलती है कि अगर पहचान नहीं हुई वही भूल बीज बुद्ध भूल है, और निश्चय करके यहाँ बीज बुद्ध भूल कौन सी है वो खोला नहीं है। क्या विचक्षणता है, बीज बुद्ध भूल करके बाप पत्र को रख दिया है, बीज बीज दोहरा भी लग रहा
है, क्रम की बात की है,
वो अलग बात है, पत्र तो बहुत करता हूँ। मुनि श्री गंगू जी 500 में ना उतरना है, एक सौ चौरानवे में जो खुद की बात किया वो तो ख्याल में बस पत्र। कहते हैं कि कोई महत्वपूर्ण योग से यह पहचान होने पर निश्चय करके निर्धार हो गया कि यही सत्संग है, यही सत्पुरुष है, ऐसा साक्षी भाव मैंने प्रतीति आत्मा आत्मा में से साक्षी आई प्रतीति आई उत्पन्न हो गया हो, उस जीव को तो अवश्य करके प्रवृत्ति को संकोच कर लेना, जो भी प्रवृत्ति में पड़ा हो उसको प्रवृत्ति को कम कर देना, ये तो उपदेश दिया है। सहज रूप से उसको पहला फर्स्ट थॉट यही आएगा कि अरे परम सत्संग मुझे मिलता है तो मुझे मेरा समय निकाल करके वो करना चाहिए, तो अपनी प्रवृत्ति को कम करने लगेगा, सीधा ही वो डिसीजन देगा तो प्रवृत्ति को कम करो, अगर छोड़ सकने की परिस्थिति हो तो छोड़ भी देगा। अंबालाल भाई ने वही किया था, अंबालाल भाई परिचय में आए वकालत करते थे, छोड़ दिया वकालत, एक ही साल में छोड़ दिया था, बिजनेस बंद कर दिया, अपना काम बंद कर दिया, उसको प्रवृत्ति को संकोच करना और अपने दोष क्षण क्षण कार्य कार्य और प्रसंग प्रसंग पर तीक्ष्ण उपयोग करके देखना, ये दूसरा बात हुआ। बाहर में क्या करना, अंदर में क्या करना, दो बात किया है। पहला विचार वो आएगा कि हमारा समय कीमती है, ऐसा योग बार बार मिलता नहीं है, हमको समय पाने के लिए हमारी बाह्य प्रवृत्ति में फेरफार कर देना चाहिए कि जिसे ज्यादा से ज्यादा से मिल सके, तो ये संकोच करने की जो बात है यानी संक्षेप करने की बात है, वो कम करने की बात, आई बिना रहेगी नहीं। बहुत कुदरती है, योग्यता में ये बहुत स्वाभाविक है। और अंदर में वो क्या करता है कि अपने दोष को देखने लग जाता है, क्षण क्षण में, कार्य कार्य में, प्रसंग प्रसंग पर अपना दोष देखने लगेगा। कैसे देखेगा? तीक्ष्ण उपयोग से देखेगा, ऊपर ऊपर से नहीं देखेगा, तीक्ष्ण उपयोग से देखना और देख करके परीक्षण करना, देखना और देख करके परीक्षण करना
है। तो उसमें चारित्र का देखना है और श्रद्धा का भी देखना है, ज्ञान का भी देखना है, अभिप्राय का।
पहले अभिप्राय का, चारित्र का तो सब देखते हैं। चोर चोरी करता है वो भी देखता है कि मुझे अच्छा नहीं हो रहा है। अभिप्राय क्या है, अभिप्राय का दोष क्या है, और मेरे जो परिणाम होते हैं उसमें प्रतिबंधक परिणाम क्या है, दर्शनों के साथ उसका कितना संबंध है, ये सब पहलू देखने में वो तीक्ष्ण उपयोग की बात है। स्थूल उपयोग में तो चारित्र के दोष दिखेंगे, ऐसा हो गया न वैसा हो गया, ऐसा विकल्प आ गया न वैसा भाव हो गया, गुस्सा हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, वो नहीं। सूक्ष्म तौर से देखेगा तो अभिप्राय को भी देखेगा और दर्शनों को भी देखेगा, और उसमें किस प्रकार का प्रतिबंध है चारों में से वो भी उसको दिखने में आएगा।
थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिए, कौन सा दोष कैसा कैसा है।
वो सब कोई भी दोष हो, दोष तो एक प्रकार के होते नहीं सबके, तो इंडिविजुअल केस में इंडिविजुअल बात होती है। अपने को ये देखना है कि हमारे परिणाम हुए इसके पीछे हमारा अभिप्राय क्या था। जैसे कि हमको खाने में अच्छा लगा, डेली रूटीन का बात है, तो भोजन में कोई चीज हमको अच्छी लगती है, भाती है, तो अच्छा लगा, इच्छा हुई और रस से खाया, अभिप्राय क्या था इसके पीछे। देखो अभिप्राय वो था, सुख बुद्धि वाला अभिप्राय था, हम खाएं तो ज्यादा खाएं, पूरा खाएं, अधूरा नहीं खाएं, शरीर में शक्ति बराबर रहे, ऐसा भोजन ले, गरिष्ठ भोजन ले, घी दूध ज्यादा ले, फल फलादि ज्यादा ले, क्या है इसके पीछे, क्या है आधार बुद्धि है शरीर में, सुख बुद्धि है पदार्थ में। अगर आधार बुद्धि है तो देह प्रतिबंध भी आया। अभिप्राय इसके पीछे देखना चाहिए और सूक्ष्म से सूक्ष्म परिणाम को देखना चाहिए।
जैसे कोई भी डिसीजन हम लोग लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, इंस्टेंस हमारे सामने आता, कोई भी इंस्टेंस हमारे सामने आता, उसमें जो भी डिसीजन लेते हैं उससे हमारे आत्म कल्याण की भावना अभिभूत होती है कि तिरोभूत होती है, इससे अभिप्राय का नाम निकल जाता है
और शुद्ध निकल जाता है। अगर हमारा अभिप्राय बदला हुआ है कि हमको एक आत्म कल्याण ही करना है, टॉप प्रायोरिटी में आए हैं, तो कोई भी बात आएगी तो उससे वो टैली करेंगे, इस अभिप्राय से ही टैली होगा। वो तो बात हो रही बाहर की, अंदर में अपने जो परिणाम होते हैं उसमें तीक्ष्णता से उपयोग, तीक्ष्ण उपयोग से देखना, इसका मतलब क्या होता है, उपयोग रखना, सावधानी रखना, मात्र देखने की सावधानी रखना उतनी बात नहीं है, तीक्ष्ण उपयोग से देखो ऐसा कहता है। और चलते हुए परिणाम की बात है, जो चले गए हो गए उसकी बात नहीं है, वहां तो देखना होता ही नहीं है। देखना तो इसका होता है जो मौजूद होता है, प्रत्यक्ष होता है, उसको देखना होता है। जो गैर मौजूद है, चले गए है ही नहीं, उसका तो विचार आता है, देखने का नहीं होता। यहाँ विचार करने की बात नहीं कि अपने दोस्त का विचार करना, बार बार अपने दोस्त का विचार करना, चलते हुए परिणामों में देखो और देख के देखो उसके क्या चमत्कार होता है। फिर से कि इस प्रकार से देख के देखो कि क्या चमत्कार होता है, जैसा कृपालु देव ने कहा इस प्रकार से देख के देखो क्या चमत्कार होता है। सीधा ही विभाव रस टूटने लगेगा, दर्शन मोह गलने लगेगा और ज्ञान में निर्मलता विवेक सूझ आने लगेगी। ये हुए बिना रहेगा नहीं। ये दोष मिटाने का रामबाण उपाय है। कैसा? रामबाण कभी खाली नहीं जाता। राम के धनुष में से तीर निकला के सामने वाला खत्म हुआ ही है, समझ लेना। वो बाण इसको छोड़ने वाला नहीं। ऐसे जिसने पहचान के बाद, अब क्या बात हो रही है, कुछ तेज की बात चल रही है कि पहचान के बाद अपना परिणाम देखने की जो प्रवृत्ति चल गई होने लगी, उसके दोष परीक्षण हुए बिना रहेगा नहीं। नियम से ऐसा ही होगा। और यह सत्संग के लिए, ऐसे सत्संग के लिए देह त्याग करने का योग होता हो तो स्वीकार कर लेना। कितना सैक्रिफाइस करना सत्संग के लिए, हाँ, तो प्राण देने को लिए हम तैयार हैं, सत्संग चाहिए हमें। सत्संग नहीं मिला हमारा जीवन चल सकता नहीं। और कुछ कोई भी मिला हमको कोई नहीं चाहिए। सबसे सबके बिना चलेगा, सत्संग के बिना नहीं चलेगा, ये बात आ जाती है। ऐसा हो ही जाता है, करने का आर्टिफिशियली करने का कोई सवाल नहीं है, देखा देखी से करने का कोई सवाल नहीं है, या लिखा है इसलिए करने का भी सवाल नहीं है कि कृपालु देव ने उपदेश दिया ना इसलिए हम ऐसा बता रहा था, ये भी जाने। ऐसा होना चाहिए, अंदर से ऐसा होना चाहिए, वो बात चलती है। उसको स्वीकार करना, परंतु इससे अधिक किसी भी पदार्थ में प्रेम स्नेह भक्ति होने देना योग्य नहीं है। और प्रमाद से और रस द्वारा वाले दोष से यह सत्संग प्राप्त होने पर भी पुरुषार्थ कर्म मंद रहता है। क्या भाई, मुमुक्षु में से भी एक प्रकार नहीं है, सत्संग मिल चुका फिर भी ढीलापन व्रत रहता है किसी को, वो प्रमाद है। या रसगारवादी जो कहीं न कहीं रस ले लेता है, पुरुषार्थ उठेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं और सत्संग फलवान होता नहीं, तो सत्संग फलवान होता नहीं, इसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ऐसा जान करके पुरुषार्थ वीर्य गोपन करना चाहिए नहीं। मैंने अपने पुरुषार्थ को उछालना, पुरुषार्थ को मंद रहना नहीं देना, उछालना पुरुषार्थ को, ऐसा नहीं चलेगा, हमको ये बर्दाश्त होने वाला नहीं है, जोर आना चाहिए। अब कहते हैं कि सत्संग यानी सत्पुरुष, अब यहां यहां अर्थ गठन किया है, अभी तक तो सत्संग सत्संग कहते थे। सत्संग यानी सत्पुरुष की पहचान होने पर भी वैसा योग निरंतर रहता नहीं हो, क्योंकि ये उदयाधीन होता है। सत्पुरुष का उदय कुछ और होता है, मुमुक्षु का उदय भी कुछ और हो सकता है, एक सा उदय दोनों का होए ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं भी होता है और प्राय नहीं होता है, तो कभी कभी वियोग भी होता रहता है। पहचान होने पर भी ऐसा योग निरंतर नहीं रहता हो, नहीं मिलता हो, तो सत्संग से प्राप्त हुआ है ऐसा जो उपदेश, यह प्रत्यक्ष सत्पुरुष तुल्य जान करके विचार करना और आराधन करना, विचार करना उतना नहीं आराधन भी करना, क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष योग की प्राप्ति नहीं हो उस वक्त का क्या करना, कि प्राप्त उपदेश को प्रत्यक्ष वत ले लेना, उसमें थोड़ा और विचार करने की जगह है। उपदेश ग्रहण करने में प्रत्यक्ष वत लेना, लेकिन सत्पुरुष का योग है उसमें प्रत्यक्ष नहीं ले लेना कि मेरे हृदय में प्रत्यक्ष है। फिर से एक भूल हो जाती है कि क्या करें। अब तो ज्ञानी पुरुष थे, पहले तो उनके पास गए, अभी स्वर्गवास हो गया, उनका आयु पूर्ण हो गया, क्या करें, तो हृदय में प्रत्यक्ष वत कर लो, इस ज्ञानी को हृदय में प्रत्यक्ष वत कर लो, तो जीव का दुख भी कम हो जाएगा, क्योंकि दुखी तो होना नहीं है जीव को, तो अपना दुख मिटाने के लिए कोई ना कोई युक्ति बनाएगा कि जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको भी प्रत्यक्ष वत समझ करके कल्पना करेगा कि हमारे हृदय में तो विराजमान रखा है हमने,
मोह राजा ने फंसाया
है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वियोग है उसमें वियोग का समाधान ज्ञानी को भी नहीं होता, और पुरावा है तो गुरु गुण संभालने में वो बात आई है, कुछ बैंसरे ने वो बात किया, गुरुदेव सोचते होंगे कि बहन समाधान कर लेगी, बस ऐसा करके छोड़ दिया है, इसका मतलब क्या, हम समाधान ऐसे विषय में करते नहीं है, और विषय में कर लेते हैं, सत्संग के विषय में हम समाधान नहीं करते। ये वियोग है, उस वियोग की वेदना जहां तक फिर से संयोग नहीं होगा वहां तक ये वेदना मिटने लायक नहीं रहेगी, मिटेगी नहीं, ये बात बनने वाली है, ऐसे नहीं कर। उपदेश ग्रहण करने में प्रत्यक्ष वत लेना, इनका जो उपदेश है वो हमको ग्रहण करना है तो ऐसे लेना के सामने बैठ करके हमको बता रहे हैं, ये पत्र हमारे सामने लिखा रहा है, हमको लिख रहे हैं, ऐसे प्रत्यक्ष वत लेना, ये पत्र रहा है जो आज पढ़ने में आया वो हमारे लिए लिखा गया था, इसलिए बचा है, भले ही 100 साल पहले लिखा है लेकिन हमारे लिए लिखा है, ऐसे प्रत्यक्ष वत उपदेश ग्रहण करने में ले लो, सत्संग करने में वियोग में समाधान करने का सवाल नहीं होता है, दो अलग अलग बात है। समाधान होता ही नहीं, यथार्थता में समाधान होता ही नहीं, उसको कहते हैं कि समाधान नहीं करना, ताकि होता ही नहीं, नेचुरली नहीं होता, हाँ वियोग की वेदना चालू रहेगी, ये वियोग हो गया है उसकी वेदना चालू रहेगी, घर का आदमी मर जाएगा तो भूल जाएगा लेकिन सत्पुरुष को भूलेगा नहीं, ये बात हो जाएगी, भूल ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति होती है, पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, अपने जो सत्पुरुष है उनको प्रभु कहते हैं, इतना प्रेम होता है कि उसको भूल सकते नहीं, सकते ही नहीं, फिर करना नहीं करने का सवाल नहीं है, सकते ही नहीं, ये परिस्थिति नैसर्गिक परिस्थिति है, कुदरती परिस्थिति ऐसी ही होती है। उसको प्रत्यक्ष तुल उपदेश को तो प्रत्यक्ष तुल जान करके उसका विचार करना और आराधन भी करना, अंगीकार भी करना, अमलीकरण भी करना, उसको कहते हैं आराधन, अमलीकरण करना, जो हमारे स्टेज का हो जो हमारी योग्यता का हो, और हमारी योग्यता में वो अंगीकार करने से हमें आगे बढ़ना होता है, उसको अमलीकरण कर लेना। कि जिस आराधन से, ऐसी आराधना करने से जीव को अपूर्व ऐसा सम्यक तो उत्पन्न होता है। देखो इसका फल क्या है, सम्यक दर्शन है। उपदेश को जैसे अपने कोई सत्पुरुष साथ साथ ही तो नहीं चलता, उपदेश दे देते हैं। गुरुदेव का उपदेश का एक समय रहता था कि सुबह सुबह उपदेश दे दिया, फिर क्या वो साथ में चलते हैं क्या? हम घर जाएंगे तो हमारे साथ आएंगे, बाजार जाएंगे तो हमारे साथ आएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। फिर हमको क्या करना है? जो भी सुना है उसका अमल कर ले, अपनी भूमिका के योग्य तो लेसन तो मिलेगा, होमवर्क तो मिल जाएगा, हमारे लिए तो वो बात नहीं। उसका अमलीकरण चालू करो गैर मौजूदगी में। ऐसा नहीं कि प्रतिक्षण वो सामने रहता है, वो भी वियोग है, संयोग का वियोग तो हुआ। लेकिन क्या करना कि उपदेश तो प्रत्यक्षवत रहेगा, कभी भी मुझे वही बात कह रहे हैं, वही बात मुझे कह रहे हैं, अमलीकरण होगा इसका, इस प्रकार से इसका अमलीकरण होगा। मैं नहीं करता हूं तो कहने के लिए तो कह रहे हैं, वो करेगा, और करेगा जो करेगा उसको तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, ये गारंटी यहां दिया है, उसको सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। जो सत्पुरुष की आज्ञा का अमलीकरण करता है उसको निर्मल ऐसा परमार्थ सम्यक दर्शन उत्पन्न हो ही जाता है, और जो आज्ञांकित रूप से सत्संग नहीं करता है, यानी अमलीकरण नहीं करता है कहने पर भी, उसको परमार्थ की कितनी बात स्पष्ट कहो तो भी समझ में आएगी नहीं, तो नहीं समझ सकेगा। आत्मकल्याण यहां से कैसे निकलता है वो नहीं पकड़ पाएगा, उसकी सूझ नहीं आएगी। आज्ञांकित पने में ये सूझ आती है, ये बात है। तो हर जगह एक पत्र में वो बात लिया है, तो यहां ये बात निकलती है कि पहचान होने पर, बात तो लिया है, इस स्टेज की पहचान होने पर अमलीकरण करेगा ही, और अमलीकरण करने वाला तो सत्संग हो ही जाएगा। पहचान तो बीजभूत कारण हो ही गया है, आगे प्रोसेस अमलीकरण का चला, आराधन का चला, उसको फिर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो ऐसा बनेगा नहीं, इसको हो ही जाएगा। यहां तक